जय राधव कुंज बिहारे
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 श्लोक संख्या 51 पर 1 मई 2016 को इस्कॉन नई दिल्ली में दिया गया।
गोपी जन बाला भारी नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप यहाँ के विषय में पढ़ रहे हो, आपको सुनाई दे रहा है और पिछले कई अध्यायों से अभी तो महाराज के विषय में पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा पहले, आपने पहले पढ़ा कि किस प्रकार महाराज ने पूरी प्रजा को शिक्षा दी। क्या शिक्षा दी? उन्होंने प्रजा से कहा भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, भगवान की सेवा करो, तो ये जीवन सफल होना करो। पीछे ये भी कह चुके हैं कि जो राजा या नेता केवल पहले से कर लेता है और उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं करता, उसको प्रजा के सारे पापों का परिणाम भुगतना पड़ता है। और भागवतम के 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन ना पढ़ते हो, आगे भी पढ़ते हो कि जो व्यक्ति चापलूसी करके नेता बन जाए, अपने आध्यात्मिक अधिकार नहीं निभाए, उसका क्या परिणाम है, क्या परिणाम होता है, जाता है। उसे जैसे गन्ने की खुशी में गन्ने को पीसा था, ऐसा अनुभव करना पड़ता। तो प्रकृति के नियम बड़े कठिन हैं। फिर मान ने प्रजा से कहा राजा की भलाई के लिए तपस्या का पालन करो, भगवान का चिंतन करो। पिंडु महाराज प्रजा को शिक्षा दे रहे थे या ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज वहां पहुंच गए। ऐसे ध्यान में आप पढ़ते हो इस प्रकार पिंडु महाराज महाराज जी जब महाराज के महल में पहुंचे, पिंडु महाराज ने उनके चरित होए, ये शिक्षा दी इस प्रकार संतों का स्वागत किया। ब्राह्मण ही पहुंचे थे भगवान के महल में द्वार पर, भगवान ने क्या किया, बिठा कर उनके चरण में, और पिता महाराज ने महाराज से पूछा ये बताइए कि जीवन के लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पिता महाराज आगे भगवान के शक्ति हमेशा बता रहे हैं कि वो महाराज को मिले, उन्होंने क्या कहा, हमें ये शिक्षा दीजिए जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करते हैं। मिले आप इस को पढ़ते हो महाराज का आप गृहस्थ आश्रम में है, आप हमें शिक्षा दीजिए शांति के आधार पर कैसे जीवन को बिता सकते हैं। दूसरे शब्दों में हमें यह शिक्षा मिलती है जब आप एक इंसान से मिले तो वो इंसान से हमें क्या पूछना चाहिए, आध्यात्मिक प्रश्न कैसे हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। आप जब जानते हो कि इस समय एक कुंभ हो रहा है उज्जैन में, पिछले हफ्ते प्रभा जी भी एक कुंभ मेला में जाते थे, तो प्रभा जी कहते थे कि हम कुंभ मेला में महानाश नहीं जाते, हमें मुक्ति मिले। हम इस उद्देश्य के साथ जाते हैं कि हम प्रचार करें, लोगों को दिव्य ज्ञान दें, हरि नाम सुनाए, जिसके द्वारा जीवन में सफल बना। जब हम संतवी संगत में आते हैं तारी संगत, हमारा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम प्रश्न पूछे जिसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति हो सके। तीसरे महाराज के विषय में इन श्लोकों में ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो आज के श्लोक में आज के श्लोक तात्पर्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी मैंने सोचा है इस श्लोक तात्पर्य को पढ़ा जाए। प्रीतम राज के विषय में आप क्या पढ़ते हो? प्रीतम राज ने अपने आप को संपूर्ण रूप से परम भगवान के शरणागत कर दिया, संपूर्ण रूप से। उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो बड़ा राज्य है, आजकल जब आप किसी राजा की चर्चा करते हो तो राज्य हो भी तो थोड़ा स्थान रहता है, तो फिर तुम राज्य था पूरे पृथ्वी पर, ये नहीं छोड़े देश पर, इस देश की ध्यान जैसे भारत में भी कई राजा थे पड़े, और जब छोड़ छोड़ा सारा क्या अमृतसर, फिर थोड़ा पूरे पृथ्वी के राजा थे। और उन्होंने ये नहीं सोचा कि भेद का माने पृथ्वी राज की महिमा के विषय में पढ़ते हो, उन्होंने ये स्वीकार किया कि वो भगवान के सनातन सेवक है, परम भगवान जो है और इन प्रगति से परे है, जन्म कर्म चावे हे विनम, जो व्यक्ति समझ आ रहा है मेरा प्रकट होना प्रकट होना देव है, वो जीवन का सफल मनुष्य है। परम भगवान हमेशा देवी में रहते हैं, मानवादी का भाव रहता है जब भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर हमारे समान बन जाते हैं। भगवान कहते हैं जन्म कर्म क्या मैं देव दिव्य अमृत, तो पृथ्वी बना ये अपने आप का समर्पण किया भगवान की सेवा में, और उन्होंने अपने कार्यों का जो परिणाम है समर्पण किया किसे, भगवान को। जैसे भगवान गीता में क्या कहते यद करोषि यद अश्नासि यद करोषि यद प्रसन्न करोषि भगवान भगवान महत्वपूर्ण श्लोक जो भी तुम करो जो भी करो ऐसे करो तो पृथ्वीनाथ के विषय में आप पढ़ते हो किस प्रकार उन्होंने अपने आप को भगवान के चरण मन में समर्पण किया, और उन्होंने हमेशा यही सोचा कि वो भगवान के क्या है नित्य सेवक। ये सोचा कृष्ण नित्य था, इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने कहा है हम सब का स्वभाव कर्तव्य क्या है, हम भगवान के उनके दास हैं सेवक। पितृ महाराज ने अपने आपको सारा यही सोचा कि वो भगवान के दास हैं, पर भगवान जो है हर चीज के स्वामी। तो ये जो भाव था पृथ्वी महाराज का, ये भाव हम सब का होना चाहिए। आज के बाद हम क्या देखते हो और नेताओं के पास आध्यात्मिक ज्ञान है नेता जुड़ गए हैं आपके काम हो गए जो प्रजा है उनके समान जुड़ी हुई है बस काम हो गए परिणाम क्या है प्रगति का चौका है पिछले महाराज के जो पिता थे महाराज बेना उनका नास्तिक स्वभाव महाराज बेना ने समाज में हर प्रकार के यज्ञ को रुकवा दिया था मेरी उपासना करने के बजाय विष्णु की उपासना कर रहे हो तुम तो बैठ गए तो फिर आज बिना ने समाज में लगभग सब हर प्रकार का यज्ञ रुकवा दिया था इसका क्या परिणाम हुआ इसका क्या परिणाम हुआ समाज में जो आवश्यक चाहिए हमें सब समाप्त हो गए सारे सागर सूख गए पृथ्वी में कुछ अन्न नहीं था फसल और खेती में कोई फसल नहीं पेड़ों में कोई फल नहीं जिसके कारण सब समाज की प्रजा और अंत में ब्राह्मण के पास कोई उपाय नहीं था पर बिना कोई श्राप दिया और उनकी बेटे तो आप देख सकते हो जब राजा में धार्मिक भाव नहीं हो जब राजा अपने आप को भगवान का दास नहीं माने राजा अपने आपको भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन नहीं करे प्रजा को किस प्रकार से कष्ट को करना पड़ता है आज आप देख रहे हो पृथ्वी पर कष्ट है बढ़ते जा रहा है जैसे हिंदुस्तान में आप देखते हो इसमें पानी की बड़ी गहरी तंगी है कई साल महाराष्ट्र और कई साल बड़ी गहरी तंगी है पानी की पानी को ले जाया जा रहा है ये टैंकर में तो ये सब का कारण क्या है भगवान गीता में कहते हैं प्रभा जी श्लोक का उपयोग करने में तात्पर्य है माया दक्षिणा प्रकृति ये जो प्रकृति है वेद निर्देश में चलती है और प्रकृति शांत कर देती है भारत में नहीं विश्व के कई स्थान है जैसे अमेरिका में कैलिफोर्निया तीन साल तो बारिश नहीं आई तो विश्व के कई स्थान है ध्यान की आवश्यकता की प्राप्ति नहीं हुई एक देश है मैंने मिला वहाँ बिजली इतनी जा रही है अब से मैं दो दिन सब जब तक सब दुकानें खुली रहती है पाँच दिन छुट्टी विश्व के कई स्थान ध्यान के ये अनुभव हो रहा है आवश्यकता की कमी क्यों क्योंकि हमारे जो नेता है ये नहीं समझ में क्या कर्तव्य होना पृथ्वी महाराज का बड़ा सुंदर उदाहरण है इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि हमें इसका प्रचार करना चाहिए पृथ्वी महाराज ने हमें क्या उदाहरण दिया पृथ्वी महाराज ने उदाहरण दिया है किस प्रकार हम सबको अपने हर कार्य को अर्पण करना चाहिए इसकी सेवा में अगर हम ये सोचे कि हम इस चीज के स्वामी हैं हम ये हमारी संपत्ति है हमारा धन हमारा देश हमारा कब तक आप इसका लाभ उठा सकते आज हमें देखो लोगों के पास अरबों 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 रुपए जो पृथ्वी के धनी लोग हैं उनकी संपत्ति बढ़ते जा रही है क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि बस कम साल में और बढ़ाना चाहिए। नारद मुनि भागवत में कहते हैं भूखे व्यक्ति का संतुलन कर सकते हो भोजन दे दो। भूखा व्यक्ति है प्रसाद उठाने के लिए भूख मिट जाएगी। प्यासा व्यक्ति है पानी लो पीने के लिए प्यास हो जाएगी। क्रोधित व्यक्ति गुस्से में है तो आप प्रणाम करोगे गुस्सा समाप्त हो जाएगा। पर जो लालची व्यक्ति नारद मुनि कहते हैं वो कभी संतुष्ट नहीं। लालची व्यक्ति को जितना आप दोगे उतना ही कम है। इसलिए आप देखते हो भारत में भी सारे बड़े व्यापारी उनका व्यापार दिन बढ़ते जाता है करता नहीं। ये प्रकृति का स्वभाव तो पितु महान हमें कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। समाज में कई बार लोग कर्मयोग शब्द का इस्तेमाल करते हैं इस विचार से आप भौतिक काम काम कर रहे हैं ये है कर्मयोग। तो बड़े स्पष्ट रूप से प्रभुजात के तात्पर्य में ये स्थापित कर रहे हैं कि कर्मयोग से कह रहे हैं जब आप अपने कर्मों का नतीजा करते हो भगवान के सामने कोई सहारा कर दिया जाता है कर्मानियवादी कारण से भगवान कहते अपना कर्म करो जो अपना लाइन है क्या महाबलेश्वर खा जाते भूल जाते कर्मानियवादी कारण से चली नहीं सब फिर उनका आप याद दिलाओ आपको अपनी बुद्धि योग्यता धन संपत्ति सबको भगवान के चरणों में मानना हम नहीं करते। मान लो हमारा भाव है नहीं ये तो मैंने कमाई अपने परिश्रम से आ जाते बार बार मांगने के लिए ये तो जान हमने कमाया है इसके परिणाम हमें भोगना चाहिए। तो जितना आप भोगे जितना रखोगे भगवान के चरण कमल में समर्पण करोगे कर्मयोग क्या है बाबा जी भगवत गीता के 18वें अध्याय ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। बाबा जी ने इस श्लोक के ऊपर 2.5 पेज का तात्पर्य लिखा है और ये श्लोकों में अनेक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा की जाती है। प्रभुपाद जी जब तात्पर्य लिखते थे तो अपने समक्ष महान आचार्यों का जो तात्पर्य है रखते थे तो उनको पढ़ते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या कहा श्रीराज चौधरी ने क्या कहा अखिल जनार्दन जी ने क्या कहा फिर उनके विचारों को देखकर साथ में जोड़ते थे अपने आप की व्याख्या। तात्पर्य पढ़ना बहुत आवश्यक है। कई बार हम केवल भागवत पढ़ते तात्पर्य नहीं पढ़ते हमें तात्पर्य पढ़ना चाहिए। तो साथी में प्रभु जी गीता के 18वें अध्याय के दूसरे श्लोक का वर्णन कर रहे हैं ताकि भगवान कहते हैं असली संन्यास क्या है। असली संन्यास ये नहीं केवल हमें कुछ करना नहीं है, हम वृंदावन जाके भजन करेंगे। असली संन्यास है अनुभूति, योग्यता, संपत्ति, समर्पण करना, इसकी सेवा में भगवान की सेवा, वो है असली संन्यास। ये नहीं जो व्यक्ति की ये व्यक्ति कहता है मेरी मेहनत तो कुछ करना ही नहीं, सब मिथ्या है, सब मिथ्या। पापा जी उदाहरण देते थे, मान लो 100 रुपए का नोट है, उसके 3 रुपए है, आपने सड़क में 100 रुपए का नोट देखा, किसी का 1000 रुपए का नोट, पापा के ज्यादा कलम नहीं है, 1000 रुपए का नोट देखा सड़क में, तो 3 रुपए है, एक तो आप घाघरा में जेब में डाल दो, कोई देख रहा नहीं है जेब में डाल देता हूँ, ये है चोरी का भाव। दूसरा उपाय है आप वहीं रहने दो, बोले मेरा नहीं है मैं क्यों, कोई और उठा लेगा। तीसरा उपाय है आप ढूंढो किसका ये 1000 रुपए का नोट है, उसे उठा दो, तीनों में कौन सा सबसे श्रेष्ठ है। उसी प्रकार जो भक्त हैं उनका भाग ये है, हर चीज के असली स्वामी असली स्वामी कौन है। भगवद गीता के 18वें अध्याय के इस श्लोक में भगवान स्पष्ट साबित करते हैं असली संन्यास क्या है। असली संन्यास है हर वस्तु का उपयोग करना भगवान की सेवा में। आगे पृथ्वी मना आगे बाबा जी में, हालांकि पृथ्वी मना रियासा आश्रम में थे, रियासा आश्रम में थे, तो भी उन्होंने इस संन्यास के भाव प्रकट किया। दूसरे शब्दों में रियासा आश्रम में रहकर भी आप असली संन्यासी बन सकते हैं, में रहकर भी आप अपने जीवन सफरी तैयारी को भगवान के चरण कमलों में समर्पण कर सकते हैं। मनासन अग्रभक्ति उन्होंने क्या कहा, मनासन दिया गया लोग अर्जुन श्री उपदेशोर, हे मेरे भगवान मैं अपनी पत्नी बच्चे धन दौलत संपत्ति मकान सब कुछ समर्पण करना हो गया आपकी सेवा, ये होना चाहिए असली समर्पण। ये नहीं ऐसे हाँ सब कुछ सुंदर किया तो चाबी हमारे हाथ में, हमें वास्तविक रूप से असली समर्पण करना चाहिए।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.